ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلى علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، اس نے زندگی گزارنے کا ایک انداز بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ مقصد حیات بھی ہمیں اللہ رب العزت نے ہی عطا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان، ان کی تخلیق کا مقصد اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور تابعی بزرگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہاں عبادت سے مراد اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ الغرض یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کی پہچان کے لیے، اس کی معرفت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے یہ بالکل واضح ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو عبادت کے لیے فارغ کریں۔ دنیا کے تمام کام اپنی جگہ پر ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دیگر تمام معاملات زندگی ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے، جو یہاں آنے کا ریئل پرپس ہے، اسے بھولا نہیں جا سکتا، اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذات کو اس کے لیے فارغ نہیں کیا تو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے حدیث مبارک میں سماعت فرمائے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرق لعبادتی املأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، تجھے غنی کر دوں گا، اور تیری محتاجی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तेरे दिल को दुनिया की मसरूफियात से, मशगूलियात से, दुनिया के काम धंधों से भर दूंगा और तेरी मोहताजी को भी दूर नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नो इंस को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और सूरह ज़ारियात की साय मुबारका में आयत नंबर 56 में वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून वाज़े किया गया। बाकी दुनिया की तमाम चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं कि बंदा इबादत के काम में उनसे मदद को हासिल करे, यानी मकसद हयात उसे पूरा करने के लिए जो ज़रूरतें हैं उन्हें भी हासिल करना है। और ये सारी ज़रूरतें मकसद हयात को कमा हक हु पाने के लिए हैं। इसलिए हर बंदे से मुतालबा है कि वो अपनी ज़िंदगी का हर हर लम्हा इबादत इलाही में बसर करे। इसकी सारी फिक्र, पूरी सही, पूरी कोशिश इसी मकसद के हुसूल के लिए होनी चाहिए। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि इस फिक्र और इस सही और इस कोशिश की बरकत से इसके तमाम मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे और सारे के सारे जो उमूर हैं वो काबिल इत्मीनान रहेंगे। यानी इबादत के मकसद के लिए जुस्तजू की, बाकी सारे पूरे हो गए। इस्लाम में ये तसव्वुर नहीं है कि इबादत तो अल्लाह तबारक व ताला के लिए हो और बाकी तमाम मामलात में वो बंदा आज़ाद ठहरे, बल्कि असल ये है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए है। सोता इसलिए है ताकि इबादत में से राहत महसूस हो। दो दिन, तीन दिन, चार दिन बंदा सोया नहीं है, इबादत करेगा बीच में नींद आएगी, थकावट का एहसास इसके साथ रहेगा। हो सकता है गफलत का मुजाहरा करे, नींद आ गई, सो गया, हो सकता है दो चार अरकान छोड़ दे। तो बंदा, ये इंसान पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए है। सोता सिर्फ इसलिए है ताकि इबादत में इसे राहत महसूस हो। खाना इसलिए खाता है कि इबादत के लिए इसे क़ुव्वत मिल जाए, नहीं वो कमज़ोर होगा, सही तरीके से खड़ा ही नहीं हो पाएगा। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, इसने खाना नहीं खाया, कुछ खाने की चीज़ खाई नहीं, सिर्फ पानी पी रहा है। कमज़ोरी की वजह से खड़ा ही नहीं हो पाएगा, खड़ा हो गया तो ज़मीन पर गिर जाएगा। तो खाता इसलिए है कि इबादत के लिए कुव्वत हासिल करे, कमाता इसलिए है कि अपनी और अल्लाह के बंदों की जो ज़रूरतें हैं और जो उनकी हाजतें हैं ये उनको पूरा आसानी के साथ कर सके। तो ये नहीं होना चाहिए कि माल कमाने में इस कदर लग जाए कि नमाज, रोज़ा वगैरह इन में बंदा कोताही करने लगे। सोने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब कर बैठे कि इबादत का वक्त ही फोत हो जाए, सारी रात बैठा रहा, सुबह नमाज फजर से पहले सो गया। खाने का इस कदर रसिया हो जाए कि फराइज को छोड़ बैठे। ऐसा अगर हो गया तो बंदे ने अपनी जिंदगी का जो असल मकसद था उस मकसद हयात को फोत कर दिया, उसे खो दिया। और अल्लाह तबारक व ताला तक पहुंचने का जो दुरुस्त वे था, जो दुरुस्त रास्ता था, ये गोया कि उससे भटक गया है। नतीजा क्या होगा? फिर ये बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। तो फिर हमें ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए अपनी ज़ात को फारिग कर ले। और अल्लाह ताला की इबादत में सबसे पहला फर्ज नमाज है। नमाज के लिए भी अपनी ज़ात को फारिग नहीं कर सकता। फारिग नहीं करेगा तो हदीस ने कहा कि इसके हाथों को दुनियावी काम धंधे जो हैं, मसरूफियात और मशगूलियात है, इनसे भर दिया जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने गौर किया होगा, काम तो ख़त्म ही नहीं होते। ऑफिस में गए, सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक ड्यूटी की, काम फिर ख़त्म नहीं हुआ, कुछ ना कुछ काम सर पे बाकी है, बोझ सुवार है। ऑफिस में ही 4 बजे जाना था लेकिन 6 बज गए, तवज्जो ही नहीं रही, नमाज ज़ोर तो पड़ी नहीं थी, असर भी निकल गई। फिर नमाज मगरिब रास्ते में निकल जाती, घर पहुंचे, कुछ ना कुछ खाना खाया, फिर उसके बाद कंप्यूटर निकाला, सामने रखा तो जो बैठ गए, दोबारा काम करने लगे, काम तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। अचानक जब घड़ी पर नजर जाती है तो 11 बज चुके, 12 बज चुके, इतना टाइम हो गया। कंप्यूटर बंद करते हैं, उसी जगह पर एक साइड पे रखा, बिस्तर पे सो गए, नमाज ईशा भी निकल गई। नमाज फजर के बाद आंख खुली, जैसे ही आंख खुली 7 बजे हुए थे, 8 बजे पहुंचना, भागम भाग तैयारी की, ड्रेस चेंज किया और नाश्ता भी बस जूतू किया, चलते चलते और काम के लिए निकल गए। काम धंधा खत्म ही नहीं होता। तो हदीस मुबारक को सामने रखें, अगर हमने ऐसा ना किया कि अपनी जात को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग ना किया, तो फिर फरमाया गया कि तुम्हारे हाथों को मसरूफियत से भर दिया जाएगा और मोहताजी के दरवाजे भी बंद नहीं होंगे। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए अपनी जात को फारिग करना चाहिए। अल्लाह ताला की इबादत में सबसे पहला फर्ज नमाज है। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। हर मुसलमान आकिल व बालिग, मर्द औरत पर रोजाना 5 वक्त की नमाज ये फर्ज है, और इसकी फर्ज होने का इनकार करना ये बंदे को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। जो बंदा जानबूझकर सिर्फ एक नमाज को तर्क कर देता है, वो फासिक है, वो सख्त गुनाहगार है और अजाब नार का हकदार बन जाता है। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हदीस मुबारक से हमें सबक हासिल करना है, अपनी ज़ात को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए फारिग करना है। अपने ज़िंदगी का जो असल मकसद है, जिसको हम मकसद हयात कहते हैं, जो रियल पर्पस इस दुनिया में आने का है, हमारी तख्लीक का है, उसे हमने पहचानना है और उसके मुताबिक अमल करना है। सीख कर जैसी वो इबादत होनी चाहिए, उन इबादत को वैसे बजा लाना है। ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात के मसाइल सीखें, हज फ़र्ज़ है तो हज के मसाइल सीखें और उसके मुताबिक अमल करें। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अल्लाह करीम ने अता फरमा दिए, वो फ़र्ज़ हैं और हम पर कोई मजबूरी भी नहीं है रोज़े रखने, उसके मसाइल सीखें। इसी तरह नमाज के मामला है, नमाज के बारे में सीखेंगे तो फिर ही पढ़ सकेंगे। अगर सही तौर पर नमाज पढ़नी ही नहीं आती तो पढ़कर भी नमाज में फसाद पैदा हो जाएगा, यानी गोया कि नमाज हुई नहीं। इसलिए ज़रूरी अमर है कि इसके बारे में सीखा जाए। तो आइए फिर सीखने का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में चंद एक अहकाम नमाज भी हम शामिल करते हैं। मर्द और औरतों की नमाज में चंद एक फुकहा ने फ़र्क बयान किए हैं, वो फ़र्क मैं आज बयान करूंगा, आप आज़ाद समात फरमाइए। मर्द और औरत की नमाज में अदायगी के जो तरीके हैं, इन तरीकों के हवाले से कई चीज़ों में इख्तिलाफ पाया जाता है। मसलन, औरत जब तकबीर कहेगी, तकबीर तहरीमा, तो अपने हाथ कंधों तक उठाएगी और मर्द कानों तक उठाएंगे, ये दोनों में फ़र्क है। औरत क़याम में अपने हाथों को अपने सीने के ऊपर बांधेगी और मर्द हाथों को नाफ के नीचे बांधेंगे, ये दूसरा फ़र्क है। और तीसरा फ़र्क यह है कि औरत रुकू जब करेगी तो ज़्यादा नहीं झुकेगी और ना ही घुटनों पर जोर देगी, यानी हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच गए, घुटनों पर हाथ रखा और उसके ऊपर जैसे मर्द हजरात जोर देते हैं और घुटने भी सीधे हो जाते हैं और ये बाजू भी सीधे हो जाते हैं, पीछे कमर भी सीधी हो जाती, ऐसे नहीं करेगी। औरत रुकू में ज़्यादा नहीं झुकेगी और ना ही घुटनों पर जोर देगी, जबकि मर्द हजरात जब रुकू करेंगे तो खूब झुकेंगे और घुटनों पर जोर भी देंगे। ये तीसरा फ़र्क था। और चौथा एक फ़र्क ये है कि औरत सजदे में ज़मीन से चपक जाएगी, जबकि मर्द की पिंडलियाँ ज़मीन से और राने पेट से और कोहनियाँ ज़मीन और रानों से बिल्कुल जुदा रहेंगी, यानी ये पेट रान का और पिंडलियों का ये फासला होगा, ये खुली होंगी, ये एक चौथा फ़र्क है। और औरत जो है ये कादे में जब ये बैठेगी, जैसे पहले तशहुद में बैठ गई या आखिरी कादा अखीरा में बैठ गई, आखिरी तशहुद में, तो औरत कादा में तवर्रुक करेगी, ये तवरुक मीन क्या होता है, यानी अपने दोनों पांव को अपनी दाई तरफ बाहर की तरफ निकालेगी, सुरीन पर बैठ गई और दोनों पांव जो है वो साइड में निकल जाएंगे। जबकि मद हजरात जब नमाज पढ़ेंगे और कादा में बैठेंगे, हाँ वो कादा उला है या कादा सानिया जिसको कादा अखीरा कहते हैं, वो कादा अखीरा है, जब मर्द बैठेंगे तो बायां पांव बिछाकर उसके ऊपर बैठेगा और दायां पांव जो है ये इसे खड़ा कर देगा, जैसे उंगलियों के ऊपर यूं करके खड़ा कर देते हैं, तो इस तरीके से ये बैठेगा। ये एक मजीद फ़र्क है जो हदीस मुबारक में बयान किया गया। तकरीबन टोटल जो है पांच फ़र्क है जो मजमूई एतबार से मर्द और औरत की नमाज में अमूमन फुकहा बयान करते हैं, इनको जहन में रखिए और इसके मुताबिक चाहे वो नमाज पढ़ने की सूरत बनाइए, क्योंकि ऐसे नमाज पढ़ने में सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, इस तरीके पर पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको जहन में रखना ज़रूरी होता है ताकि उनको अमल में लाया जा सके, और अगर वो जहन से निकल जाएँ तो फिर अमल में कैसे आएंगी। और अमल में जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर समझें कि वो याददाश्त में महफूज हो जाती हैं, फिर उसके मुताबिक आदतन इंसान अमल करता चला जाता है। नियत करके करेगा, कोई भी अमल करते हो जैसे सुन्नत अदा करनी है तो नियत करके करेगा तो उसको सवाब मिल जाएगा, क्योंकि इन नमल आमालू बिन नियात, आमाल पर जो सवाब का दारोमदार होता है वो बंदे की नियत के ऊपर डिपेंड होता है। तो मजमूई एतबार से जब नमाज पढ़ें तो हर अमल को, हर रुकन को और हर सुन्नत को अदा करते हुए जब इंसान की नियत भी हाजिर होगी कि ये अमल मैं इसलिए कर रहा हूँ तो इसे सवाब भी मिलता रहेगा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये फ़र्क जो है ये अपने जहन में रखिए ताकि ये याद रहें, मर्द और औरतें अच्छे तरीके से इनके मुताबिक नमाज पढ़ें ताकि सवाब का एक ख़जाना जमा हो सके। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आज के इस प्रोग्राम में चंद एक रिकॉर्डेड सवाल भी हम शामिल करते हैं। जी सवाल चलाइए।
मेरा नाम सैयद नूरुल हसन है। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा का जनाजा हुआ था,
हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपका विसाले पुर मलाल हुआ उस वक्त मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म ही वारिद नहीं हुआ था, लिहाजा आपका ये जो मारूफ अंदाज नमाज जनाजा का है उसके मुताबिक नमाज जनाजा नहीं पढ़ा गया था। उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा का हिजरत से 3 साल पहले विसाल हुआ, और एक कौल के मुताबिक हिजरत से 4 या 5 साल पहले आपका विसाल हुआ, इस तरह के अकवाल भी मिलते हैं। और उस वक्त क्या था, आपकी उम्र मुबारक कम उमेश 65 साल थी। ये वो ज़माना था कि जब मैयत पर नमाज जनाजा अभी नहीं पढ़ी जाती थी, नमाज जनाजा का हुक्म नहीं था, तो चूंकि अभी हुक्म ही वारिद नहीं हुआ था इस वजह से हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा इस मारूफ तरीक़ाकार के मुताबिक अदा नहीं की गई थी। मजीद सवाल चलाइए।
मेरा नाम मोहम्मद जैनुल आबदीन अतारी है। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जब बाजमा नमाज हो जाए तो मुक्तदी को नफिल और सुन्नतें जगह तब्दील करके अदा करनी चाहिए या नहीं, जवाब इनायत फरमा दीजिए।
बाजमात नमाज अदा करने के बाद अब सुन्नतें बाद नमाज़ों के आखिर में होती हैं, जैसे जोहर की नमाज़ है, इसी तरह मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज़, तो बाद वाली जो सुन्नतें और नवाफिल यानी बकिया जो रखाते हैं उन्हें पढ़ने के लिए बाद मुसलमान जगह बदल लेते हैं, यानी बाजमात नमाज पढ़ते हुए जिस जगह पर जिस मकाम पर खड़े थे उसको बदल लेते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो ये जगह बदलना एक मसनून अमल है और अच्छा अमल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो ये समझिए कि जनाब ये फ़र्ज़ है या वाजिब का दर्जा रखता है, ऐसा नहीं है, ये एक मसनून अमल है, एक अच्छा अमल है। और अहादीस मुबारका में सराहत के साथ जगह बदलने का हुक्म या उसकी तरगीब दी गई है। और ये जो जगह बदलने की तरगीब दिलाई गई है इसमें हिकमत क्या है, ये भी उलमा ने बयान फरमाई। एक इसकी हिकमत यह है कि इबादत करने के जो मकामात हैं वो बढ़ जाएंगे, گویا پہلے یہاں کھڑے تھے یہ جگہ گواہ بن گئی، اب یہاں پر کھڑے ہیں تو یہ جگہ بھی گواہ بن گئی، اب یہاں اس جگہ پر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جگہ بھی اس کے لیے گواہ بن گئی۔ تو عبادت کرنے کے جو مقامات ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور مقامات عبادت کا بڑھ جانا یہ اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور دوسری ایک اور وجہ بھی علماء نے بیان فرمائی کہ فرض اور نفل میں امتیاز ہو جائے گا، یعنی بعد میں آنے والا جو مقتدی ہے پھر اسے شبہ نہیں ہوگا، کیونکہ جماعت جیسے ہوتی ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیفیت تو چونکہ ختم ہو چکی ہے، اب آنے والا جب آئے گا وہ دیکھے گا کہ بھی لوگ بکھر کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جماعت جو پہلے قائم ہوئی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے، تو اسے شبہ نہیں رہے گا۔ تو شبہ ختم ہو جائے گا، اس سے دوسرے مسلمان کے لیے آسانی پیدا ہوگی، ہو سکتا ہے کہ پہلے جیسے جماعت قائم ہوتی ہے ویسے جماعت کی طرح ہی سب لوگ اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، آنے والا جماعت سمجھ کے اس میں شامل ہو جائے حالانکہ یہ نوافل پڑھ رہے تھے، اب یہ بعد میں اس کو پتہ چلے گا پھر یہ دوبارہ اپنی نماز پڑھے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس شبہ کو ہی ختم کر دیا جائے، اور مختلف مقامات پر بکھر کر جب نماز پڑھ لیں گے تو اس طرح آنے والے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مزید سوال چلائیے۔
میرا نام محمد علی اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز جمعہ میں بعد والی جو چار سنتیں ادا کی جاتی ہیں ان کے بعد والی دو سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ؟
نماز جمعہ میں فرضوں سے پہلے جو چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں سنت قبلیہ کہا جاتا ہے، یہ چار سنتیں بالاتفاق سنت مؤکدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد دو فرض پڑھے گئے، دو فرضوں کے بعد جو چار سنتیں پڑھی جائیں گی یہ چار سنتیں بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور جن کے بعد دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں عموماً حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یہ مؤکدہ نہیں ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ دو نفل پڑھتے ہیں تو اس طرح نماز اپنی مکمل کر لیتے ہیں۔ مزید سوال چلائیے۔
میرا نام محمد طاہر عطاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، فرض نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دوسری رکعت کے شروع میں بھولے سے سورۃ قریش شروع کر دی، اور دو آیتیں پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر دوسری سورۃ ملائی، اب سجدہ سہو نہیں کیا، نماز مکمل کر لی، اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیے، کیا سجدہ سہو لازم تھا یا نہیں، اس نماز کا حکم بھی کیا ہوگا، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔
سورہ فاتحہ کو نماز میں سورت ملانے سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے کسی سورت کی ایک آیت بھی بھول کر پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو لازم ہونے کے باوجود اگر نہیں کیا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ اب سورہ قریش کی اگرچہ ایک آیت بھی پڑھی ہے، شروع میں چونکہ سورہ فاتحہ ہی پڑھنا واجب تھا لیکن سورت قریش کی آیت پڑھ لی گئی، تو اس طرح واجب کا ترک ہوا، اور واجب کے ترک ہونے سے نماز واجب الاعادہ ہو گئی کیونکہ سجدہ سہو نہیں کیا گیا۔ اگر سجدہ سہو کر لیتے، کیونکہ بھولے سے یہ واجب ترک ہوا، سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی، اور چونکہ سجدہ سہو نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، عبادت سے برتر عبادت نماز۔